नमस्कार ब्रह्मा कुमारी, इसकी फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव और सोशल मीडिया हैंडल्स पर ये हमारी लाइव प्रस्तुति है। नाम है इसका बी द चेंज सीरीज। मैं हूं आपका दोस्त आरजेश निधि और पिछले कई दिनों से हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। इन बातचीतों में बहुत सारी चीजें निकल कर आई हैं। हमें कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो अक्सर हम नहीं सोचते थे कि हम एक दूसरे की मदद के लिए क्या क्या कर सकते हैं। इस बदलाव के दौर में हमने बहुत कुछ नया सीखा है और नया समझने की भी कोशिश की है, और जहां पर हमें मदद की जरूरत महसूस हुई है वहां पर ब्रह्मा कुमारी के वरिष्ठ राजयोगी भाई बहनों से हमें वो गाइडेंस, वो स्पिरिचुअल मार्गदर्शन मिलता आया है। और जैसे ये समय बदल रहा है, इस बदलते हुए समय में अपने आप को बदलने की भी हमने बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है। आइए इस बदलाव के दौर को अच्छे से बदलकर हम एक नए समय के साथ अपने जीवन को बताएं। जैसे आजकल ये चर्चा चल रही है टू द न्यू नॉर्मल, ये जो न्यू नॉर्मल है इसे समझने के लिए और इसमें जीने के लिए हमें भी बहुत सारे बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज हमारे साथ एक और मास्टर ऑफ मेडिटेशन जुड़ेंगे जो हमें जीवन में आध्यात्म के उपयोग के प्रति स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स को अपने लाइफ में अप्लाई करने के बहुत ही सहज और सुंदर तरीके बताएंगे। आज हमारे साथ हमारे मास्टर ऑफ मेडिटेशन के रूप में, हमारे स्पिरिचुअल विजडम के रूप में ब्रह्मा कुमारी चक्रधारी दीदी जी जुड़े हैं। चक्रधारी दीदी जी चेयरपर्सन हैं ब्रह्मा कुमारी के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के विमेंस विंग के, और पिछले अनेकों दशकों से उन्होंने लाखों लोगों को ब्रह्मा कुमारी के मार्ग पर, आध्यात्म के इस राह पर आगे बढ़ने में मदद किया है। आज एक ऐसी प्रेरणादायी व्यक्ति से आज हमारी मुलाकात हो रही है, आइए करते हैं उनसे बातचीत। चक्रधारी दीदी जी आपका स्वागत है आज के प्रोग्राम में।
धन्यवाद, आपका भी स्वागत है
जी। दीदी, ये जो बदलाव का वक्त आया है, बहुत सारे हम में से लोग जो थे वो तैयार नहीं थे इसके लिए। हमें लगा कि अचानक ये चीज आ गई हमारे ऊपर और अब हमें करना ही पड़ रहा है ऐसे। आप कैसे देखते हैं इस बदलाव के दौर को? आध्यात्मिकता के हिसाब से इस बदलते वक्त में व्यक्ति इस दौर को कैसे देखे? चैलेंज के रूप में देखे या फिर ऐसे देखे कि हाँ ये भी एक वक्त है, ये गुजर जाएगा, वो अच्छे वक्त की कामना करते रहे, प्रार्थना करे, क्या करना चाहिए?
कि जीवन में बदलाव तो सदा ही आता है, ऐसा नहीं कि कभी बदलाव नहीं आता है। हाँ, बदलाव के रूप जरूर बढ़ते हैं, और अभी ये जो बदलाव का रूप हुआ ये कहने में ये आएगा अचानक आया, लेकिन अचानक भी जो आया है वो कोई खराब के लिए नहीं आया, क्योंकि समय का मतलब ही होता है जो चलता रहे। समय कभी ठहरता नहीं, और जो चलती चीज है वो शुद्ध होती है, अशुद्ध नहीं होती। इसलिए जो समय आया है ये चला जाएगा और बदल जाएगा, लेकिन जैसा समय चल रहा है उस अनुसार हमें अपनी स्थिति का निर्माण अवश्य करना है। अब मान लीजिए कहा जाता है कि आप बाहर निकलेंगे तो मुख ढक के निकलिए, आप अपना नाक को मुख को ढकिए, हाथ धोइए, या आप सैनिटाइज कीजिए, जो भी कहा गया है हम उसको पूर्ण रूप से पालन करें। समय है, मानो जवानी के समय, जवानी में मनुष्य चलता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बुढ़ापे में अगर वो वैसे ही चलना चाहे जैसे जवानी में चलता है तो नहीं चल सकता। एज के अनुसार भी चेंज आता है, फैमिली के ट्रेंड के अनुसार भी चेंज आता है, हमेशा मनुष्य में चेंज आता है। और मैं ऐसा समझती हूँ कि हमें हर चेंज को स्वीकार करना चाहिए। कई बार कई स्वीकार नहीं कर पाते, कहते अरे हमारे टाइम पर तो ऐसी बेटियां होती थी, बहुएं ऐसी होती थी, आज देखो कैसी हो गई बेटियां, कैसी हो गई बहुएं और कैसे हो गए बेटे, अरे जमाना ही बदल गया है। वो हमेशा पश्चाताप, दुखी और परेशान हो, और एक समय के अनुसार समझता है कि समय बदल रहा है, बच्चों को भी बदलना है, मुझे भी बदलना है। अगर ये समझ ले तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होती, हमको तो कुछ नहीं लग रहा है। कोई कहते हैं 3.5 मास के बाद आज मैं किसी जरूरी कार्य के कारण बाहर निकली, तो मेरे से पूछा कि आप इतने समय बाद बाहर निकले आपको कैसा लगा? मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं लगी, अंदर थे तब भी कोई बड़ी बात नहीं लगी, बाहर निकल आए तब भी कोई बड़ी बात नहीं लगी, क्योंकि हमने समझा है जैसा टाइम है उस अनुसार हमको चलना है। तो हमें कुछ उसमें ना तो मुश्किल लगता है, ना भारीपन लगता है, ना अजीब लगता है। ठीक है, बहुत अच्छा है, चल रहे हैं, चलते चले जाएंगे। जैसा समय कोई पूछते, कल पता नहीं कब तक ये रहेगा लॉकडाउन, मैं कहती हूँ कब तक रहेगा, इसको सोचें क्यों। आप अपने को प्रिपेयर रखिए कि जैसा भी टाइम आएगा उस टाइम के अनुकूल हमें अपने को चलाना है। बाकी हम कहें पता नहीं कब तक चलेगा, पता नहीं कैसे होगा, ये पता नहीं करते करते अपने जीवन का पत्ता काटते रहते हैं। सब कुछ हमें पता है, टाइम चेंज होता है, टाइम सदा वैसा रहता नहीं है। अब दिन है, दोपहर है, रात है, शाम है, ये सब चलती है ना। बचपन है, जवानी है, बुढ़ापा है, ये सब चलता है, तो हमेशा चलता ही रहा है ना। हाँ, ये कुछ अलग प्रकार का कहते हैं, मैं कहती हूँ अलग प्रकार भी एक रौनक है ना, वो भी तो एक नवीनता है ना। थोड़ी नवीनता भी देखनी चाहिए, अच्छा है नवीनता देखना। किसको नहीं पसंद है, सभी को पसंद है, हमको भी बहुत पसंद है, इसलिए नवीनता भी है और ऐसा लग रहा है नथिंग। मुझे तो ऐसा प्रतीत अपने अनुभव से।
बहुत ही अच्छी बात आपने कहा, ये भी नवीनता की बात है, ये आपको अच्छा लग रहा है ऐसा कह रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत सभी लोगों को ऐसा सोचना चाहिए, तो ये चीज को हम बेहतर एंजॉय कर पाएंगे। हमें से बहुत सारे लोग यही उम्मीद लगाए बैठे थे कि भाई वापस कोई पूरे दिन पुराने दिन आएंगे, तो उम्मीद करना अच्छी बात है, बट आज को भी एंजॉय करना इतना ही इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ दोस्तों के लाइव सवाल ले सकता हूं अभी, जो हमारे दोस्त सवाल पूछना चाहते हैं, दीदी जी से कोई मार्गदर्शन लेना चाहते हैं, कोई भी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में, इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, यूट्यूब पे, फेसबुक पर, जहां पर भी आप देख रहे हैं, और आपके कमेंट्स को हम स्क्रीन पे दिखाएंगे और आपके कुछ सवालों को हम दीदी जी से लेंगे। पहला सवाल आशु हमारे साथ पूछते हैं, आशु घोष नाम है इनका। आशु हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, वो कहते हैं, ओम शांति दीदी, आई हैव रिसेंटली कम्प्लीटेड माई कोर्स एंड सो मच हैव ऑल्सो एज अ बिगिनर, हाउ टू गेट इन टू द फ्लो ऑफ राजयोग एंड मेक इट अ लाइफ स्टाइल। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पिछले दिनों में मेडिटेशन सीख रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेस किया है बहुत सारे लोगों ने, आशु ने भी ये कोर्स किया है, उन्होंने रिसेंटली राजयोग का कोर्स किया है, और वो कहते हैं एज अ बिगिनर उनको कैसे राजयोग के फ्लो को अपने लाइफ में लाना चाहिए और इसे लाइफ स्टाइल कैसे बनाया जा सकता है, ये प्रश्न पूछते हैं।
लाभ उठाया और अपने जीवन को एक नवीनता देने के लक्ष्य, जब नया समय चल रहा है तो आपने उस नवीनता देने को आपने बहुत अच्छा प्रेफरेंस दिया। मैं ऐसा समझती हूँ कि ये लाइफस्टाइल रियलिटी में है यही हमारी, लेकिन हम थोड़ी अपनी रियल लाइफस्टाइल से जरा बाहर जा चुके थे, अब हमको रियल लाइफस्टाइल में आना है। सुनते चले आ रहे थे कि देह तो नाशवान चोला है, अरे इसको तो ना रहना है, ना था ना रहेगा, ये तो खत्म हो जाएगा। अब हमको ये समझना है कि रियली मैं एक चेतन शक्ति, अविनाशी शक्ति आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, लेकिन शरीर मेरे जीवन में मुझे एक्सप्रेस करने का एक माध्यम मिला है। तो माध्यम को माध्यम समझ कर यूज करना वो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको माध्यम समझ कर यूज कीजिए। मैं ये हूँ ये नहीं समझी, और जिस समय कोई कार्य करना है इंद्रियों को कंट्रोल नहीं करना, मानो उस इंद्रिय को यूज कर लीजिए, और जब आपका काम पूरा हो जाए फिर अपने सिंहासन पर जाकर बैठ जाइए। हर समय थोड़ी देर कर्म इंद्रियों के अंदर ही रहेंगे, ये बार बार थोड़ा अभ्यास करने की जरूरत है, क्योंकि हमने बुद्धि को ऐसा फ्री छोड़ा है, मन को इतना फ्री छोड़ा हुआ है, जब इंद्रियों से काम करना करते हैं और जब काम पूरा हो जाता है तो हम तब तक भी इंद्रियों का ही चिंतन, इधर उधर तेरा मेरा चिंतन करते हैं। और ईश्वर ने हम बच्चों को इतनी सुंदर लाइफस्टाइल बना रही है कि बच्चे तुम्हारा समय और स्वास्थ्य बड़ी वैल्यूएबल चीज है, इसे कभी वेस्ट नहीं जाने दो। आप समझो आपने कोई बात कह नहीं, आपने कह दी, कह के फिर बैठ जाइए अपने सिंहासन पर, जो आपकी आसन है, आत्मा की जो जगह है, बैठ के बड़ी रॉयल्टी से सुनिए आप दूसरा आपको रेस्पॉन्स क्या दे रहा है, उसका रेस्पॉन्स अच्छा है या बुरा है, वो आपकी समझने की भाव है, वो आप समझिए, जानने की कोशिश कीजिए। अब आपको क्या रिएक्ट करना है वो रिएक्ट कीजिए। मानो हर समय ध्यान रहे कि मैं शरीर से अलग हूँ, दूसरा कोई अचानक बीच में आया, समझो एक दूसरा एक्टर आत्मा एक दूसरा चोला धारण किए हुए एक और एक्टर आया, आओ हेलो एक्टर, तो अंदर से अंदर ये नहीं ऊपर से कहने लग जाए, लेकिन हम उनका वेलकम करें, एक और एक्टर आया है। अब वो कहता है क्या बातचीत हो रही है, ये कोई बात का टाइम है, ये काम का टाइम है, उनका अपना सोचने का तरीका है, हम डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं सिंहासन पर बैठा हुआ एक राजा हूं, एक छोटा सा प्राणी ने कुछ बोल दिया और मैं कहूं कि उसने तो अपसेट कर दिया, कितनी अच्छी हमारी कन्वर्सेशन चल रही थी, आनंद ले रहे थे, इन्होंने आके बीच में ये क्या कह दिया कि ये कोई टाइम है, तो काम का टाइम है, ये कोई बात का टाइम है, ये कौन बीच में लगते हैं। अरे इन एक्टर का अपना रोल है, वो अपना रोल टाइम पर प्ले करने के लिए आए हैं, आप साक्षी बन के अब देखिए उनके रोल को, वाह आपका रोल भी बहुत बढ़िया है, ठीक है जी काम करने का टाइम है, काम कर लेंगे, बहुत ही अच्छा आपने कहा, रिमाइंड कराया, थैंक्स आपका। ऐसे करके हम खुशी खुशी उनको एक्सेप्ट करें, रिजेक्ट ना किसी को करें, जो कर रहे थे उसको एंजॉय कीजिए, अचानक कोई बात चेंज होती है तो उसको एक्सेप्ट कीजिए और एक्सेप्ट करके एंजॉय कीजिए, खुश रहिए। मुझे आता है कभी भी अपने को अपसेट तो होने ही नहीं दीजिए, कोई मनुष्य आज छोटी सी कुर्सी मिलती है उसको एक काउंसलर बन जाता है और वो कुर्सी को छोड़ना नहीं चाहता है, उसके लिए आप देखिए घर घर जाते हैं हाथ जोड़ जोड़ के जी हमको वोट देना। अरे हमको तो परमात्मा ने कहा हो, तुझे तो इतना बड़ा मैंने सिंहासन दिया हुआ है, सारे कर्म इंद्रियों का तुझे मैंने राजा बनाया हुआ है, तो दोष शब्द किसी के सुन के अपनी राजाई छोड़ देता है और फिर आता है इसने क्यों कहा कैसे कहा। अरे तू तो शांत स्वरूप आनंद स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है, तो मुझे आता है ये लाइफ स्टाइल इतना आनंद का है, इतना अच्छा जीवन है, इतना सुखद जीवन है, इस जीवन में जीते हैं तो राजा बने ना बने लेकिन हम महाराजा बन के जीवन जी सकते, मुझे ऐसा विश्वास है और मेरे जो जीवन का अनुभव। और मैं कहती हूँ आपने इतना सुंदर जीवन लिया और क्या चाहिए आपको, ये तो खाते पीते उठते बैठते स्वमान में रहिएगा, वह रे मैं वह रे मेरा भाग्य, इस लॉकआउट ने मुझे मेरे जीवन को कितना महान बना दिया, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ होता, ये टाइम मेरा कहाँ चला जाता। धन्य हूँ मैं और धन्य है ये समय और धन्य है ये नॉलेज जिसने मेरे जीवन को एक श्रेष्ठता में परिवर्तित किया, मैं ऐसा कहूंगी आप, ठीक है।
बहुत ही सुंदर बात कही दीदी, जो ये आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, कि हम लाइफ को ऐसे अप्रिशिएट करना शुरू करें, इस समय को अप्रिशिएट करें, अपने आप को अप्रिशिएट करें, ये बहुत सारे लोग हम नहीं करते हैं। अक्सर हम सुना करते हैं, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ये कहते हैं कि सुबह उठ के आईने में देखो और अपने आप को वाह वाह कहो, बट शायद जीवन के हर पहलू में इस चीज को यूज करना बहुत जरूरी है। कुछ दोस्त हमारे कमेंट्स लिख रहे हैं, उन कमेंट्स को हम स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। अब मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न हमारे साथ जसलीन पूछते हैं, क्षमा करें, हमारे साथ राहुल सवाल पूछते हैं। राहुल कहते हैं, दीदी आई एम इन कॉर्पोरेट प्रैक्टिसिंग राजयोग फ्रॉम लास्ट 3 years, बट इन वर्किंग सिचुएशन बिकम डिफरेंट, मच प्रेशराइज्ड एंड इनसिक्योरिटी इन करियर, हाउ कैन आई ओवरकम द थॉट ऑफ इनसिक्योरिटी। राहुल का ये प्रश्न है, ये जॉब में इनसिक्योरिटी और पिछले कुछ समय से जो ये प्रेशर क्रिएट हुआ है इसके बारे में पूछते हैं। इससे ही मिलता जुलता प्रश्न है, ओम शांति दीदी, हाउ टू हैंडल द इमोशंस रिलेटेड टू जॉब लॉस एंड इनसिक्योरिटी इन जॉब, व्हाट थॉट्स वन शुड क्रिएट टू ओवरकम द एंग्जाइटी और थॉट्स ऑफ फियर व्हेन वर्किंग इन प्राइवेट सेक्टर। और इसी से मिलता जुलता प्रश्न जसलीन का है, और जसलीन भी यही सवाल पूछते हैं कि जहां पर हम काम करते हैं आजकल के समय में जॉब की इनसिक्योरिटी बहुत होने लग गई है और हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं जॉब छूट न जाए, जॉब लॉस ना हो जाए, ऐसे समय पर अपने जॉब के प्रति जो हमारी एंग्जाइटी है और भय की भावना है प्राइवेट सेक्टर में जब हम जॉब करते हैं, तो उसे हम कैसे ओवरकम करें, ये सवाल है।
मुझे आता है कि कोई भी बात होती है होने से पहले अगर हम नेगेटिव इकट्ठा कर लेते हैं तो जैसे हम अच्छी चीज को टेढ़ा बनाने का काम कर रहे हैं, आप सोचिए, हमेशा कहते हैं किसी बुरे दुश्मन के लिए भी कभी बुरा ना सोचिए, और आप अपने लिए बुरा सोचते हो, ये सोचते हो नौकरी छूट गई, अगर मुझे निकाल दिया, अगर तनख्वाह ना दी, अगर अगर मगरमच्छ खा जाता है अगर करते करते, क्यों को अगर कहते हो, यही कहो जरूर है नौकरी लगी हुई है, बहुत ही अच्छी है, आनंद ले रहे, जो होगा देखेंगे, जब है तब तो एंजॉय कीजिए, आप तो एंजॉय के टाइम ही नौकरी छोड़ के बैठे हुए, आप तो पैसा मिल रहा है और उस समय ही आपके समझते हो कि पैसा नहीं मिलेगा, ये क्या कर रहे हो आप। इसलिए जैसा समय है उस अनुसार एंजॉय कीजिए, और जो आप अच्छे से अच्छा सोच सकते हैं सोचिए। मैं ऐसा कहूंगी, कहते हैं कि थॉट कैन चेंज द माउंटेन इवन, अगर आपका विचार शक्तिशाली और दृढ़ है तो हो सकता है आपकी हट्टी नौकरी भी लग जाए, आपकी कच्ची नौकरी भी पक्की हो जाए, आपको छुड़ाने वाला भी आपको कहे कि नहीं आपको नहीं जाना, मुझे आपकी इम्पोर्टेंस है। हमेशा अपने आप को स्वमान में रखिए, अपनी इम्पोर्टेंस को जानिए, जिस काम में आप हैं उस काम में दिल लगा के गच्छित होकर के जितना अच्छे से अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं और अच्छे से अच्छा काम करके अपने बड़ों को प्रसन्न कर सकते हैं, आप सब कुछ कीजिए, फिर परिणाम जो होगा देख लेंगे, लेकिन आपने अपनी तरफ से तो अच्छा किया और कर रहे हैं। आप अपनी तरफ से ही नेगेटिव सोचने लग गए, और नेगेटिव करने के कारण पहले ही आएगा पता नहीं कितने दिन काम करना है या नहीं करना, फालतू टाइम इतना मैं लगा दूं, तभी ना सोचिए। हम हमेशा कहते हैं प्रेजेंट आपके पास इतना गिफ्ट है कि इसको चमका दीजिए, और ये आपका पास्ट फ्यूचर जो है वो आपको सुंदर भविष्य आपके सामने आ जाए। कभी भी प्रेजेंट में नेगेटिव नहीं सोचना है, इंजॉय के टाइम ही आप ऐसा सोच रहे हैं तो जब ऐसा हो जाएगा तब पता नहीं आपकी क्या हालत होगी। कभी संकल्प में भी नहीं आने दीजिए कि ऐसा कभी हो जाएगा, संकल्प में नहीं आने दीजिए। और जिनको संकल्प आपके लिए आएगा भी, वो संकल्प वहीं का वहीं स्टॉप कर देंगे। आपके संकल्प में इतनी पावर है, अपने को लाइट हल्का ना समझिए, पावरफुल समझिए, बहुत पावरफुल। और जिस काम में है अगर आप दिल लगा के कर रहे हैं, आप मेहनत से कर रहे हैं, आप नवीनताएं लाने का काम कर रहे हैं, आप औरों से भी अच्छा काम करके दिखाने की कोशिश में हैं, तो आपको क्यों अपने ऊपर शक आता है? कभी अपने ऊपर शक नहीं की, मैं ऐसा समझती। अब आप क्या समझते वो देखिए। आप
मैं समझता दीदी ये गाइडेंस ये बहुत काम आएगा, क्योंकि तीन चार दोस्तों ने यह सवाल पूछा है, मैं समझ सकता हूँ आजकल के परिवेश में ऐसा होता है, और उसी टाइम पे ये याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि हाथ में है उसे एंजॉय करें, और ये नहीं सोचे कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो ये नहीं सोचना चाहिए। बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने दिया। अगला प्रश्न आरव शर्मा जी का है, और आरव हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, और आरव पूछते हैं मेरा सवाल है कि अगर हमें कोई एडिक्शन हो जाए जिसकी वजह से हमारी हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर असर होता है और फिर गिल्ट भी आता है तो थॉट्स बार बार आने लगते हैं तो क्या किया जाए, प्लीज गाइड, ये कहते हैं। मैं समझता हूँ आरव जी का प्रश्न बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स के साथ भी है, कुछ लोग नए नए से स्पिरिचुअलिटी से एक्सप्लोर कर रहे हैं इस लॉकडाउन में 2-3 महीने से, कुछ लोगों को पुरानी एडिक्शन है वो छोड़ने में उनको दिक्कतें आ रही है बट स्पिरिचुअलिटी अच्छी भी लग रही है, तो ऐसे टाइम पे जो पुराने एडिक्शन हैं उसकी वजह से हेल्थ और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे असर होता है तो लोगों को अब गिल्टी फील करने लगे, पहले तो गिल्टी फील नहीं करते थे कि एडिक्शन थे, बट अब जब स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं तो अब वो गिल्टी फील होता है और बार बार वही ख्याल आते हैं, अरे मैंने तो ये गलती कर दी, ऐसा हो रहा है, तो इन थॉट से कैसे बाहर निकलें, कैसे इसे जीता जाए, इस पर गाइडेंस मांगते हैं।
को ये जो अंदर से गिल्टी फील हो रही है ये आपका बहुत ही अच्छा लक्षण, क्योंकि इसका मतलब है कि आपने कमजोरी को कमजोरी समझा है और आपने एडिक्शन स्वयं डाली है, कोई एडिक्शन ऊपर से डालने लिए नहीं आया, धरती के तले से निकलकर नहीं आया, आपने एडिक्शन डाली है। जब आप एडिक्शन डाल सकते हो तो आप एडिक्शन हटाने में भी उतने ही समर्थ हो, उससे ज्यादा समर्थ, क्योंकि अभी आपको गिल्टी महसूस होने लगी, पहले जब आपने ये आदत डाली थी तब आप कॉमन समझते थे, सब करते हैं, मैंने किया तो कौन सी बात, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा कि राइट नहीं, ये रॉन्ग है। जब ये आपने समझ लिया और आपके संकल्पों में दृढ़ता आ जाए, धरत पड़िए, धर्म नहीं छोड़िए, मुझे ये करना ही है और करके ही रहूंगा, आपके दृढ़ संकल्प से आप विजेता मिलेंगे। हमने तो देखा इस विद्यालय में लगभग मुझे भी 55-60 वर्ष हो चुके हैं, ऐसे एडिक्शन वाले लोग, इस प्रकार खाने वाले, पीने वाले, ना जाने क्या क्या करने वाले, लेकिन उन्होंने केवल ये संकल्प कर लिया और संकल्प दृढ़ किया। आप देखिए, पहले कोई दान पुण्य करते थे तो पानी लेकर के हाथ से ऐसे छोड़ देते थे, कहते जी हमने इसको संकल्प कर लिया। अब संकल्प की हुई चीज पड़ी भी होती थी, कहते ही हम नहीं खा सकते, क्यों, हम बच्चे थे तो दान की हुई, दादी जी थे पंखे के ऊपर फल वल रख के, ऐसे कोई दिन आता है जब वो दान करते हैं तो वो रखे होते थे, हम बच्चे कहते थे ये लेना है, तो दादी जी कहते थे नहीं ये संकल्प किया हुआ है, इनको नहीं टच करना, और हम समझते ये संकल्प किया हुआ है, ये नहीं टच करना, सब एक दो को कहते थे ये नहीं टच करना, ये दादी जी का संकल्प किया हुआ है। और दादी जी स्वयं भी, हालांकि बच्चों से प्यार है, उस समय घर में वो चीजें खिलाने के लिए बच्चों को है नहीं, वो जो थी वो सारी ब्राह्मणों के हिस्से में लिख दी, लगा दी सारी उनके हिस्से में, बच्चे मांग रहे हैं, लेकिन बच्चे भी इस बात में है कि दादी जी ने संकल्प कर लिया और अभी हम इस संकल्प को दृढ़ रखेंगे, हम नहीं तोड़ेंगे, बिल्कुल टच नहीं करना है। तो हम देखते थे कि संकल्प दृढ़ होना चाहिए, करना है तो करना है, आपने किया ना, अब नहीं करना है एक बार दृढ़ सको, ये नहीं मैं नहीं चल सकूंगा, फिर कहीं आदत बन जाए, फिर लोग कहेंगे देखो तुमने पहले भी छोड़ा था, अब तुम फिर छोड़ने जा रहे हो, पहले भी तुम्हें फिर दोबारा आदत आ गई थी। हम इतना कमजोर संकल्प करते हैं, इतना नेगेटिव सोचते हैं, जो अपनी शक्ति को आप ही खा लेते हैं, शक्ति मेरे में है लेकिन अपनी शक्ति को आप ही समाप्त करते हुए और हम ऐसे कमजोर बन जाते। आप एक दृढ़ संकल्प करो, ये गलत है। और ईश्वर ने ज्ञान से मुझे स्पर्श कर दिया, इतनी सुंदर बादशाह देने आया हूँ, अरे बच्चे मैं तुम्हें डबल क्राउन प्रिंस बनाने आया हूँ, विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम इस छोटी सी चीज को, एक 3 इंची की सिगरेट को, तुम ऐसे पानी को जिसमें रंग और करवाट भरी हुई है उसको पिए बिना रह नहीं सकते। मुझे याद है एक सरदार जी थे, साकार बाबा के सामने आए और बाबा को कहा, बाबा मेरी एक आदत है, और मैं जब 12 साल का था, आज मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैं 12 साल से लेता हूँ लेकिन केवल 4 ही चम्मच लेता हूँ, ज्यादा नहीं लेता। बाबा ने कहा, बच्चे ये 4 चम्मच तेरे विश्व की बादशाही गवा दी, तुमने विश्व की बादशाही पानी है या 4 चम्मच गवानी। सचमुच वो आत्मा जब संदेशी तन में शरीर छोड़ने के बाद आई, तो अब मैं वो दृश्य है लेकिन अब सब समझ नहीं पाएंगे इस बात को, कैसे वो आत्मा संदेशी तन में आई और बाबा को देखते ही इतना रोए, इतना रोया, जो मैंने सुना हुआ था कि जैसे आंसुओं की झड़ी लग जाए, झड़ी मैंने फर्स्ट टाइम देखी, इसको झड़ी कहते हैं, कैसे मोटे मोटे आंसू गिरे। अब हमें तो मालूम नहीं था ये क्यों रो रही है ये आत्मा, क्योंकि संदेशी के रूप में रो रही है। अब उसको तो हमको बाद में बताया गया, और बाबा उसको क्या कह रहे हैं, बच्चे तुम्हें मैंने कहा था ना कि बच्चे कोई बात, बाबा रिमाइंड नहीं करा रहे मेरी गलती है मैं बोल रही हूँ, बाबा ने कहा बच्चे जो हो गया सो हो गया, अब पश्चाताप करना नहीं, मेरे बच्चे चुप हो जाओ। फिर बाबा प्यार कर रहा है लेकिन सब बैठे हुओं का हृदय एकदम ऐसे हो गया कि अरे इस आत्मा को बाबा ने, बाद में जब पता चला कि बाबा ने कहा था 4 चम्मच के बदले तो विश्व की बादशाही गवा गई, तो कर्म इंद्रियों का राजा वर्तमान बनेगा, भविष्य विश्व का बादशाह बनेगा, जीवन में सुख शांति आनंद पवित्रता का साम्राज्य तेरे होगा। अरे बच्चे ये छोटी सी चीजें तो त्याग नहीं सकता। और मैं समझती हूँ अगर प्राप्ति को सामने रखेंगे तो ये जो चीजें हैं इनको त्यागना कोई बड़ी बात नहीं। हमें प्राप्ति विस्मृत होती है, अभी ज्ञान में बहुत चल रहे हैं, ज्ञान सुनते हैं लेकिन इस ज्ञान से क्या प्राप्त होने वाला है वो तो जरा सामने लाइए, उस प्राप्ति के सामने क्या चीज है। आज एक छोटा बच्चा भी समझता है मेरा एग्जाम होगा, मैं सेकंड में चला जाऊंगा क्लास में, तो आप सोचिए वो छोटा बच्चा भी पढ़ने बैठ जाता है, उसका भी दिल करता है टेलीविजन देखूं और मैं खाऊं घूमूं, लेकिन वो भी पढ़ने बैठ जाता है। बड़े बड़े भी देखिए, अपने मैरिज ब्रदर की मैरिज हो रही है, वो नहीं जा रहा, पता है एग्जाम है, मुझे उसमें क्लियर होना है और मुझे अच्छे नंबर लेने हैं, आप देखिए कितना त्याग कर लेते हैं। अरे ईश्वर हमको इस समय मनुष्य से देवता बनाने आया, और संसार को बदलने से पहले वो हमको आदेश देता है तुझे अपने को बदलना है, तेरे बदलने से ये संसार बदल जाएगा, इसलिए मेरे बच्चे तुमको बदल के दिखाना है। और इतना प्रभु का कहना, इतना प्यार से और इतनी ऊंची प्राप्ति उसके सामने, क्या बड़ी बात है। मैंने आदत डाली, मैं मालिक हूं अपना, जब मैं आदत डाल सकता हूं तो मैं आदत हटा दी, मैं ऐसा कहूंगी। और हमने तो देखा आदत हटाने वालों ने संकल्प किया खाली एक, कुछ नहीं हुआ, कई कहते हैं चक्कर आ जाएंगे, नींद नहीं आएगी, पता नहीं कुछ नहीं होता उनको, ये खाली मन के संकल्प है और कोई बात नहीं। बहुत आत्मा बलवान है, पावरफुल है, वो सब कुछ कर सकती है। और खास बात है, बाबा कहते तू दृढ़ संकल्प कर, तेरे को शक्ति देने के लिए मैं बांधा हूं, मैं शक्ति दूंगा। क्योंकि दुनिया में कहते हैं हरिद्वार का रास्ता सब दिखा सकते हैं, लेकिन जाने आने की टिकट नहीं देंगे, लेकिन हमारा बाबा कहता है मैं तुझे रास्ता भी दिखाता हूँ और टिकट भी देता हूँ। आप सोचिए फिर भी मुश्किल है, आप खाली योग लगाइए और दृढ़ संकल्प रखिए, मुझे ये करना है बाबा, मुझे ऐसा करना है। मैंने तो देखा कोई बड़ी बात नहीं, मामूली सी बात है, कुछ नहीं। हम छोटे ज्ञान में आए, हमको लोग कहते थे इतना त्याग है, कैसे त्याग, हमको लगता था क्या समझते, क्या त्याग किया हमने, हमें पता ही नहीं चला कुछ त्याग भी होता है। एक नेचुरल लाइफ लगी, क्योंकि हमको प्रभु की वो सुख, वो शांति का जो अनुभूति या प्रभु प्राप्ति का जो अनुभव हुआ, और दाता के सदा ऐसा लगता था कि सब कुछ स्वयं करा रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे, वो करा रहा है। तो आप अनुभव करके देखिए, इस समय यही तो समय है ईश्वर का अनुभव करने का, इसलिए कुछ मुश्किल नहीं, सब सह।
बहुत अच्छी बात है दीदी, ये जो मोटिवेशन आपने अभी दिया था ये कितना आसान कर देता है। बहुत बार हम हैवी हो जाते हैं, और जब बड़ों से ऐसा मार्गदर्शन मिलता है, उनके अनुभव सुनने को मिलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ कर सकते हैं, हमसे पॉसिबल है। और मैं सोचता हूँ हमारे दोस्त इस बात को समझ पाएंगे। और जो आपने कहा एडिक्शन भी हमने ही शुरू की है, तो इसे खत्म करना भी हमारे पास ताकत है, तो ये बहुत ही अच्छी और बड़ी बात आपने कही। अगले प्रश्न की तरफ मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारे कुछ दोस्त आपको थैंक यू भी कह रहे हैं आपके गाइडेंस के लिए, वो कह रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है हमें। सिद्धार्थ है हमारे साथ, वो यूट्यूब से जुड़े हैं, और वो कहते हैं परमात्मा से प्रेम कैसे बढ़ाएं, ये इनका प्रश्न है। और कल हमारे एक दोस्त ने भी ये सवाल पूछा था, कल प्रोग्राम इंग्लिश में था बट ये हिंदी में सवाल आया था जो हम नहीं ले पाए थे, ये मिलता जुलता सवाल है। उन्होंने प्रश्न ये कहा था कि जिनको हम सामने देखते हैं उनसे प्रेम करना तो आसान होता है, हमारे रिश्तेदारों से, भाई बहनों से, बंधु मित्रों से हम प्रेम करते हैं, बट परमात्मा से कभी हमने देखा नहीं है, आमने सामने का संबंध नहीं है, तो उनसे प्रेम कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उन्होंने भी इसके बारे में बात कही थी कि लोग कहते हैं कि प्रेम से परमात्मा को याद करो बट वो होता नहीं है, थोड़ी देर के बाद सूखा महसूस होने लगता है, ऐसा उन्होंने कहा था। और सिद्धार्थ आज यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि परमात्मा से प्रेम को कैसे बढ़ाएं, इसके बारे में मार्गदर्शन।
हाँ ये जरूर है, कहते हैं कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। अब इसका मतलब क्या, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को ये स्पष्ट किया कि मेरे से प्यार करने से पहले स्वयं को समझना बहुत जरूरी है, और वो ये कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ। और जितना जितना आपके अंदर प्रेम आनंद शांति आती चली जाएगी, ये सब चीजें आपको प्रभु के प्यार में डुबोती चली जाएंगी। आपको प्यार करना नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका प्यार का स्वरूप वो प्यार करा देगा। जैसे हमको किसी ने कहा कि यहाँ पर जो बहनें बड़ा प्यार से बोलती हैं, मिठास से बोलती हैं, हमारी आवाज बड़ी कर्कश है, हम कैसे प्यार से बोले, हमने कहा हम प्यार से कोई मिठास से खास बोलने का कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन जब हमको ये पता चल गया कि आत्मा है ही प्यार स्वरूप, है ही प्रेम स्वरूप, है ही आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप है, खुशी का स्वरूप है मेरा, तो जब मुझे अपने स्वरूप की पहचान मिल गई तो मेरा बोल, मेरा कर्म, मेरा व्यवहार, मेरी दृष्टि, मेरी वृत्ति अकॉर्डिंगली वैसे के वैसे चलेगी जो मेरा स्वरूप है, ये एक नेचुरल हो जाएगा। अब मान लीजिए घर में कोई बड़ा है तो उनको पता चलता है इसमें मैं बड़ी हूँ, ये सब छोटे बच्चे हैं, तो बड़ों का बड़ा बन के बड़प्पन से वो सबसे बात करते हैं, बेटा खा लिया सबने, रेस्ट कर लिया, सब संतुष्ट हो, क्योंकि समझते हैं मैं बड़ा हूँ। अगर उसको यही नहीं मालूम है बड़ा हूँ तो वो कैसे चल सके। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं जो हो वो आपको याद रखना कि मैं शांत स्वरूप हूँ और प्रेम स्वरूप। जितना जितना आपका स्वरूप निखरता जाएगा उतना उतना आपका प्रभु के प्रति प्रेम बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रेम सिखाने वाला तो वही है। और उससे क्यों बढ़ेगा, क्योंकि आप में प्रेम का गुण आएगा और ईश्वर में प्रेम का गुण ऑलरेडी है, तो दोनों की जहां इटैली हो जाएगी, मिलान हो जाएगा, वहां वो चीज आकर बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। अब मान लीजिए मेरे में प्रेम आया लेकिन मेरे सामने वाला ऐसा है कि उसमें इतना प्रेम है नहीं, वो खुश्क है, या दूसरा एक ऐसा है कि वो बड़ा शांत रहता है, वो प्रेम का रूप नहीं दिखाई देता, तो मैं कितना भी प्रेम करना चाहूंगी वो बड़ा ऐसे सुबट सा बन के बैठा है या मेरी बात को ऐसे सुंदर जैसे सुनी नहीं रहा। लेकिन परमात्मा तो है ही प्रेम का सागर, वो कहते थोड़ा भी प्रेम का स्वरूप बन जा तो मेरे प्रति तो तेरा झुकाव अपने आप हो जाएगा, ड्राई नहीं रहेंगे, बहुत अंदर से प्यार इतना आता है, कभी कभी मुझे तो इतना आता है बाबा सामने कैसे तुझे प्यार करूं, लेकिन ऐसा लगता है वो प्यार का सागर हमारे हृदय में समा जाए, बस उसकी याद सदा समाई रहे, यही जैसे वो हमारे पास बैठा हुआ है, हम कभी उससे अलग नहीं है। इसलिए आपको प्यार करना नहीं पड़ेगा प्रभु से, आप केवल याद रखो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, सुबह उठते शाम दोपहर रात ये भूल ना जाना, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। और सामने कोई खुश्क सा आदमी आपको मिल जाएगा ना, रूखा सूखा ऐसा होगा, आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, ये कैसा आदमी है, चेहरे पर खुशी नहीं, आवाज में कुछ रौनक ही नहीं, लेकिन परमात्मा तो है ही प्रेम का सागर। तो जिस प्रेम के सागर को आप प्यार से याद करना चाहते हैं तो आपका जो प्रेम का स्वरूप होगा उस प्यार के सागर में खो जाएगा। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बाबा मुझे बहुत, मैं प्यार शब्द नहीं कर रही लेकिन बाबा कर रहा है, फिर मुझे आता है नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं भी कर रही होंगी लेकिन मैं कर नहीं रही, मैं अपने प्यार के स्वरूप में बैठी। कहते ना ऐसे को तैसा मिले कर कर लंबे हाथ, जब मैं प्यार स्वरूप बन जाती हूँ, आनंद स्वरूप होती हूँ, तो जैसे बाबा के प्रति मेरा प्यार और आनंद एक नेचुरल हो जाता है, वो मुझे करना नहीं पड़ता, स्वरूप बनाना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक हो जाता है। ये कोई बनाने की प्रेम किसी से दुनिया में प्रेम करते हैं और आर्टिफिशियल खाली, तभी तो टूट जाता है। कहते प्रेम का रिश्ता थोड़े दिन ही चलता है फिर खत्म हो जाता है उनका, लेकिन प्रभु प्रेम का रिश्ता तो चाकू छुरा भी मार दे तब भी नहीं टूटता है। हमारे सामने दृश्य आते थे, कोई कहते थे आप मेरी टांग काट सकते हो लेकिन मेरा प्रभु का प्रेम मेरे हृदय से नहीं ले सकते, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। वो ऐसा नहीं कि नहीं रह सकती, रहना चाहती हुए नहीं रह सकती, देखो प्रेम इतना है कि प्रभु के प्रति उसकी आस्था, विश्वास, लगन उस प्रभु के प्रति इतनी ज्यादा होती है कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर सकता। उसको लगता है अरे ये इस दाता को ना प्यार करूं तो किस को करूं, दुनिया में उस जैसा कोई दिखाई नहीं देता, कोई एक भी तो दिखाई दे जाए जहां से प्यार इधर से हटा के उधर ले जाए, वो सब टेम्पोररी वाले, स्वार्थ वाले प्यार, सब दिखावे वाले प्यार, क्या प्यार है। और प्रभु का प्यार तो बड़ा एक रियल है, जब हम रियल बनेंगे तो रियल के साथ संबंध हमारा रियल झुक जाता है, तो आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैं जो अपने अनुभव से आपको बता रही हूँ, बस आप याद रखो मैं प्यार स्वरूप, मैं प्रेम स्वरूप, मैं आनंद स्वरूप हूँ। आपका स्वरूप दाता से आपको जोड़ दे, आपको दिल नहीं करेगा कि उस प्रभु की याद को मैं कभी छोड़ दूं। कोई भी कहेगा क्या तुम्हें हर समय तुमको योग का ही ध्यान रहता है, आप कहेंगे तो कोई बुरा काम थोड़ी कर रहा हूँ, आपका काम भी तो कर रहा हूँ, ऑफिस का काम भी तो कर रहा हूँ, अगर उससे प्यार करता हूँ तो कौन सी बड़ी बात। लेकिन उसके प्यार के बाद बाकी किसी का प्यार कुछ आनंद नहीं आता है, वो प्यार पता चलता है एक प्यार क्या होता है, इंसान का प्यार और भगवान का प्यार क्या, मैं ऐसा कहूँ।
बहुत ही अच्छी बात आपने ये बात कही दीदी, क्योंकि बहुत बार लोग स्पिरिचुअलिटी में नए होते हैं, ये सवाल उठता है, बट आपने बहुत अच्छे से उस चीज को एक्सप्लेन किया है, ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज है और ये ज्यादा डिमांडिंग नहीं है। हमारे साथ अगला प्रश्न है, अगला सवाल अमरीशा खंडेलवाल पूछते हैं। अमरीशा पूछते हैं, ओम शांति, प्लीज टेल मी हाउ कैन आई स्टॉप इन्फ्लुएंस ऑफ आउटर नेगेटिव वाइब्रेशंस ओवर मी। मैं अपने घर में योग नहीं लगा पाती हूँ, मे बी मेरे हाउस के वाइब्रेशन इन्फ्लुएंस मी, प्लीज टेल मी हाउ टू रेक्टिफाई। अमरीशा जी भी मैं समझता हूँ कि नए ही हैं मेडिटेशन के लिए, और वो कहते हैं कि वो अपने घर में मेडिटेशन करने में उनको दिक्कत सी महसूस होती है, लोगों के नेगेटिव वाइब्रेशंस भी हमें इन्फ्लुएंस करते हैं क्या, ये प्रश्न पूछते हैं। और अगर हमारे घर में वाइब्रेशंस को ठीक करना है, हमारे घर के वाइब्रेशंस को अच्छा बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ये प्रश्न पूछते हैं अमरीशा।
घर के वाइब्रेशंस पर डिपेंड नहीं रहेगा, आप अपने घर में एक स्थान, चाहे वो एक कुर्सी की गद्दी हो या एक कुर्सी ही हो, और वो स्थान इतना निश्चित कर लीजिए कि मैं जब योग में बैठूंगी तो मैं इस स्थान पर बैठू। जैसे घरों में भी माताओं ने बहुत अच्छे छोटे से बाबा का कमरा बनाया जिसमें चाहे एक चेयर रखी हुई हो, हम लोगों ने भी सेंटर पर बाबा का कमरा बनाया हुआ है जहां जाके विशेष बैठते हैं। तो आप अगर एक स्थान निश्चित कर लेंगे और आप जब भी योग में बैठेंगे तो जो आपके वाइब्रेशंस हैं उस स्थान को इतना पायस करेंगे, इतना पावरफुल बना देंगे, पवित्र बना देंगे कि नेगेटिव वातावरण का इफेक्ट वहां नहीं जाएगा, और आएगा भी सही तो वो उस प्रभाव में नहीं रहेगा, चला जाएगा। आप उनके वातावरण का इंतजार करते रहोगे तो क्या छत पर जाके योग लगाएंगे, आप कहेंगे वहां भी चारों तरफ छतों से भी वाइब्रेशंस आ रहे थे, बगीचे में गए वहां भी लोग घूम रहे थे उनके भी वाइब्रेशंस आ रहे थे, किसी के वाइब्रेशंस आते हैं तो आए। आप अपने वाइब्रेशंस के जिम्मेवार हैं, आप दूसरों के वाइब्रेशंस कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। आप अपने घर में कोई भी स्थान एक निश्चित जरूर कीजिए, ऐसे नहीं जहां आया जब आया बैठ गए, नहीं, एक स्थान निश्चित कीजिए और वहीं पर योग बैठिए। और जब आप योग में वहां रोज बैठेंगे आप देखना वो स्थान आपको बार बार अट्रैक्ट करेगा, दिल करेगा मैं वहां जाके बैठूं। और ऐसे पावरफुल वातावरण बना के वहां रखिएगा जिससे कि चाहे आप छोटा सा चित्र शिव बाबा का रख दो, वातावरण बनाने के लिए एक अगरबत्ती जला दो या एक छोटा सा दिया ही जला दो, जिससे आपको ये रहे कि ये स्थान मैं बाबा को याद करने का बनाया है। या शिव बाबा का वो जो प्लास्टिक का एक चित्र होता है वो किरणों वाला चित्र लगा दीजिए, जिससे एक याद का स्थान बना दो, छोटा सा स्थान चाहे बना, लेकिन वहां रोज बैठोगे तो आपका वातावरण बहुत दिव्य बन जाएगा, अलौकिक बन जाएगा। इसलिए आपको बाकी सब घर वालों की जिम्मेवार तो आप नहीं बन सकते, लेकिन आप अपने वातावरण से अपने घर वालों को इतने श्रेष्ठ पॉजिटिव वातावरण दे सकते हो। आप दाता के बच्चे देने वाले, दाता का बच्चा लेने वाला नहीं होता है। अगर आप उनके इंतजार में रहेंगे कि उनके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आए तो मेरा अच्छा योग लगे, ना वो देंगे ना आपका योग लगेगा। कभी इंतजार ना करो, हमेशा बाव कहते इंतजाम करो। तो अपने घर का एक कोना, और कोई नहीं जगह है, चलो घर की सीढ़ी के नीचे कोई जगह होगी, वहीं एक जगह बना लीजिए, आप जाके बैठ जाइए। ऐसा उचित स्थान जहां पर घर वालों को कोई इतराज ना हो और आप शांत होकर बैठेंगे तो मैं ये कहूंगी कि वहां का वातावरण आपने ऐसा पावरफुल बनाया कि कोई नेगेटिव वातावरण आपके बनाए वातावरण को डिस्टर्ब नहीं करेगा, और दूसरों को भी दिल होगा थोड़ी देर हम भी यहाँ जाकर बैठे। आप ऐसा क्यों नहीं क्रिएट करते, ये क्यों समझते वो बनाए तो मैं योग लगाऊं, मैं बनाऊं तो वो ही आकर योग लगाए। हमेशा अपने आप को कोई अच्छे कार्य करने के लिए आगे लाइए। किसी से पीछे चलना एक सेकंड बनना है, लेकिन फर्स्ट बनकर के अनेकों को अपने साथ चलाना ये महान, ऐसा कर।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही। मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग मेडिटेशन कहते ही एक गलत इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं कि यहाँ हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, बट बिना रिसोर्सेस के भी हम वो चीजें कर सकते हैं, हम खुद वो वाइब्रेशंस बना सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा यूट्यूब से नुपुर माथुर पूछते हैं। नुपुर पूछते हैं, ओम शांति दीदी, हाउ टू कोप अप विद लोनलीनेस? आई लॉस्ट माई मदर एंड आई डोंट हैव एनी सिस्टर्स और मेनी फ्रेंड्स। वो कहते हैं कि अकेलेपन से अपने आप को कैसे कोप अप करना चाहिए, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिसेंटली अपने मदर को खोया है और उनके घर में उनके कोई सिस्टर्स नहीं है या ज्यादा कोई उनके फ्रेंड्स नहीं है, तो ऐसे में लोनलीनेस के साथ कैसे डील करना चाहिए पूछते हैं।
ना कहो, इस समय परमात्मा ने हम बच्चों को कहा है कि आपको माता चाहिए, पिता चाहिए, सखा चाहिए, बहन चाहिए, भाई चाहिए, जिस भी संबंध का अनुभव आपको चाहिए, मुझे ज्योति स्वरूप परमात्मा को उसी संबंध में सामने लाओ। अब मान लीजिए आपको माँ का संबंध चाहिए, क्योंकि माँ अभी अभी रिसेंटली गए, तो आप ये देखो वो परमात्मा जिसको दुनिया गाती है कि तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा के सुख देने, तुम्हें माता च पिता तुम्हें गायन गाते हैं ना, तो आप उस परमात्मा को अपने माँ के रूप में ऐसे देखो जैसे कि वो मेरी माँ। खाना बनाओ तो कहो चलो मम्मी आज जाइए खाना बना रहे हैं, आपने बनाना है मुझे बताते जाना, जैसे बनाना होगा मैं वैसे ही बनाऊंगा। आप थोड़ा सा चकला लीजिए या बेलन लीजिए, मान लीजिए घर में खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, देखिए मम्मी ठीक बन रहा है। कौन मम्मी? परमात्मा को मैंने अपनी माँ बनाया है। अरे वो माँ बनाओ जो अविनाशी, नाशवान को हमने बनाया हुआ था माँ, लेकिन जब तक वो थे तब तक उनके संबंध और स्नेह में हम पलते रहे, लेकिन वो तो सब टेम्पररी है। आज वो गए हैं, कल कोई जा सकता है, परसों मैं जा सकता हूँ, लेकिन बाबा बच्चों को कहते हैं सच्ची माँ तुम आत्माओं की तो मैं हूँ, सच्चा पिता तुम आत्माओं का, सखा स्वामी तो मैं हूँ। आप ये क्यों समझते हो मैं लोनलीनेस फील करता हूँ? आप अलोन नहीं हो, पता है आप बहुत बड़े फैमिली वाले हो, क्योंकि शरीर तो हमने यहाँ आके लिया और ये शरीर को जन्म देने वाली माँ के लागे और शरीर के जन्म देने लेने वाले दूसरे भाई बहन के लागे, लेकिन हम सब आत्मा हैं और आत्माओं का पिता परमात्मा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, परमात्मा अजर अमर अविनाशी है, वो हमारी माता भी है, पिता भी है, बंधु भी सखा भी है। वो कहते हैं जब तेरे वो संबंध है तो तू मुझे भूल जाता है, और जब वो संबंध नहीं है तो कम से कम अब तो तू मुझे याद कर ले। तो आप देखिए बाबा को माँ बना करके, आप बहन बनाकर कभी आइए मेरी बहना, आओ दोनों जने, आज ना काम जरा ज्यादा है, थोड़ा आप करना थोड़ा मैं करूंगा। आप बाबा को ऐसे समझना मेरी बहन है, आप अनुभव करके देखेंगे सचमुच आपका काम इतनी जल्दी कैसे हो गया, आप ही आश्चर्य खाएंगे। आपको रोटी बनानी नहीं आती होगी, लेकिन आपके वो माँ के रूप में आपको रोटी बना के खिला देगा। आप कहेंगे कैसे खिला देगा? बनवाएगा आपसे ही, पकवाएगा आपसे ही। लेकिन जैसे माँ अपने बच्चे को हाथ से करा करके करके देती है, ऐसे वो आपको अनुभव कराएगा, लेकिन हृदय से उसे बनाना। ऐसे ही ऊपर ऊपर से तो बहुत लोग किसी को भी मम्मी पापा कह देते हैं, लेकिन जहाँ दिल का संबंध होता है वहीं वो लोनलीनेस फील करते हैं। इस समय आज ये समझना मुझे अविनाशी माता पिता को अपना बना करके और हर कर्म में उनको अपने साथ रख, और वो मुझे जो सहयोग देंगे वो दुनिया वाला कोई सहयोग नहीं देगा। संसार वाला कोई मजाक कर लेगा, लेकिन ईश्वर मुझे पग पग पर सिखाएगा और माँ बहन दोस्त बन करके, मेरे कदम कदम का साथी बन करके मेरे जीवन का राह दिखाए। मैं तो ऐसा देखती हूँ, सच्ची माँ है, हमारे भाई हैं, कुमार हैं। कई बार हम कहते हैं आपको मुश्किल नहीं लगता? कहा नहीं दीदी, जब मुश्किल लगता है हम तो बाबा को बुला लेते हैं, जल्दी आ जाइए बाबा, ये काम है जल्दी ऑफिस जाना है और ये सब्जी देखो गली नहीं रही, तो बाबा पता नहीं उस सब्जी को जल्दी करवा देता है और हमारा हो जाता है काम। तो विश्वास जानिए, निश्चय जानिए, वो सर्वशक्तिमान दाता है, वो क्या नहीं कर सकता। दुनिया खाली कहती कहती है, लेकिन आप सच्चा अनुभव करके देख। वो खाली मंदिर में गए तो मात पिता बालक तेरे कहार घर आ गए, सच्चा प्यार कहाँ है मात पिता। आपकी मम्मी आज नहीं है तो आपको कितनी याद आती, ऐसे वो परमात्मा मेरी माँ है, आपको घर आते ही आए, मम्मी मैं आ गया, बहन को समझो बहन भी मेरा वही है, मैं आ गया, प्यार से बोली। अब बताइए चाय पियेंगे क्या, मैं भी आपको बना के अभी पिलाता हूँ, बना लीजिए चाय, को आओ मम्मी दोनों मिलकर पीते हैं बड़े प्यार से। कोई कहेगा मम्मी इनकी चली गई, ये तो बेचारा अकेला है, वो कौन कहता है बेचारा, मेरे साथ तो स्वयं सर्वशक्तिमान मेरी माँ बन करके मेरी पालना कर रहा है। मैं तो शाम को आता हूँ ऑफिस से, जल्दी जल्दी आता हूँ, चाय का टाइम हो रहा है, मम्मी इंतजार कर रही होगी, क्योंकि मम्मी स्वयं नहीं बनाएगी, मैं बना के पिलाऊंगा उसको, और पीते समय अच्छा मम्मी बताओ ठीक बना ना, ऐसे जैसे मैं बाबा से सामने बैठ के पूछ रहा हूँ। इतना ईश्वर से संबंध जोड़ लो, हम देखते हैं बिना संबंध के ईश्वर को याद करना बड़ा मुश्किल, कहीं भी दुनिया में पड़ोसी अड़ोसी भी होंगे, संबंध जोड़ता है मनुष्य, कोई भी चीज कोई ले जाए, आपका तिनका भी कोई ले जाए, कहेंगे ये कौन लगता है जो ऐसे ले गया उठा के, लगता कौन है, पहले रिश्ता पूछा जाता है। अरे परमात्मा के साथ तो हमारे सारे संबंध, दाता है वो कहता है तू मुझे जिस संबंध में मेरा अनुभव करना चाहे मैं तेरी सेवा के लिए सदा हाजिर। आप अनुभव करके देखिए, आप एक बार कह देना बाबा आज से मैंने आपको अपनी माँ बनाया, ठीक है प्रॉमिस, अब आपने प्रॉमिस निभाना है, मैंने तो प्रॉमिस कर लिया है, बाबा से प्रॉमिस करा लेना और बाबा आपको माँ का बहन का सारे अनुभव इतने प्यार से कराएगा कि आप दूसरों को अपने अनुभव सुनाए। कोई आपको कह दे आप तो अकेले हो, वो क्यों, मेरी मम्मी मेरे साथ है, वो हर समय मुझे गाइड करती है, हर समय मुझे अपना साथ देती है, प्यार देती है, क्या नहीं मेरी माँ से मुझे मिले, सब कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं खाली कहने मात्र होगा, मिलेगा अनुभव करने। हमने तो देखा एक माता थी उनका बेटा नहीं था, बेटियां चार थी, उसने कहा शिव बाबा जो है ना वो मेरा बेटा है बस। अब चारों बेटियां लोग कहें मारवाड़ी लोग थे, बेटी की शादी होगी बेटा नहीं होगा तो शादियां कैसी होंगी, कौन शादी पर बैठेगा, अरे कहती मेरा बेटा इतना पावरफुल है सब पर बैठ जाएगा, सब अपने आप ही करेगा। और सचमुच वो स्वयं आश्चर्य खाती बेटियों की शादी हो कैसे गई, दीदी मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी आके कहता है कि ये लड़की की शादी तो भी तुम मेरे को पुण्य लेने दो, तुम भले बैठो लेके पुण्य मेरे को लेने दो, तो जो भाई का बहन का काम करना सब कर लेते फिर मुझे आगे कर देते। तो मैं कहती हूँ मेरे बेटे तू जीता रहे, तू बहुत ही अच्छा है, तू तो मुझ माँ का नाम बाला करने वाला है, विश्वास से है, बहुत कुछ करता है, कम नहीं दाता।
बहुत ही अच्छी बात आपने कही दी, बहुत बार हम आध्यात्मिक धर्म में ये चीज भूल जाते हैं कि परमात्मा को हम याद करते हैं बट वो संबंध नहीं से याद करते हैं, हम बस आवश्यकता पड़ने पर याद करते हैं, याद तो करना है संबंध भी याद करना है कि वो रिश्ते के साथ याद करते हैं, एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश्ड हो सुप्रीम के साथ तो चीजें करना आसान होता है। अगला प्रश्न हमारे साथ फेसबुक से रितु गोयन का पूछते हैं। रितु का प्रश्न है I look after for all my family members, but I'm always angry from the inside. और ये कहते हैं कि how to become lovable and satisfied. बहुत बार ऐसा होता है कि इस लॉकडाउन के दौरान भी ऐसा बहुत हुआ है दीदी, जहां पर घर में जो माताएं बहनें हैं उनको बहुत ज्यादा काम करना पड़ा है, घर में ही लोग हैं सारे तो उनके लिए जो भी उनके डिमांड्स हैं उसे जरूरत से ज्यादा टाइम देके पूरा करना पड़ा है, तो जरूरत तो पूरा कर रहे हैं बट अंदर से थोड़ा डिससेटिस्फाइड है, गुस्सा महसूस होता है कि इतना ज्यादा करना पड़ रहा है या कुछ भी कारण हो सकता है, तो पूछते हैं कि हाउ टू बिकम लवेबल एंड सेटिस्फाइड, हम स्वयं संतुष्ट कैसे बने और प्रेम पूर्ण कैसे बने पूछते हैं।
ना तो आप खुश हो और ना आपसे दूसरे ही परिपूर्ण रूपेण खुश या संतुष्ट, और उसका कारण यही है करते हुए भी जैसे आपकी मनोस्थिति जो है वो उसमें इतने नेगेटिव वाइब्रेशंस रखती है जो उनको संतुष्टता नहीं आने देती। और रियलिटी है कि घर में एक नारी सारा कर रही है, मान लीजिए पति है, अब पार्टनर कहते हैं उनको, अब पार्टनर टेलीविजन देख रहे हैं या कभी गेम खेल रहे हैं, आप लगे हुए किचन, बच्चे अपना लगे हुए खेलने के लिए, खाने के लिए, सब टाइम पर आ जाएंगे। लेकिन ऐसे टाइम पर अंदर ही अंदर कुसना नहीं चाहिए। आप एक दिन जब देखो ना सब मूड ठीक में है, कहना भी आज हमने देखा है गवर्नमेंट भी हमारी बहुत मीटिंग्स करती, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आपस में मीटिंग करते हैं, कोई भी कॉरपोरेशन है वो सब मीटिंग करते हैं। तो मेरे को मन में आता है क्या होती है मीटिंग, आज हम भी मीटिंग करें तो बोलो आज शाम को 6 बजे जो भी टाइम निश्चित कर लीजिए, अच्छा इतने बजे हम सबकी मीटिंग है, बच्चों को पति को जो भी है उन सबको मीटिंग में आमंत्रित कीजिए, थोड़े फूल मंगवा लीजिए और थोड़ी मीठी टोली, भले आपके पास ड्राई फ्रूट पड़ा वही रख लीजिए, जब सब बैठ जाए भी आज मीटिंग है वे देखिए क्या मीटिंग होगी, तो आप सबसे पहले सबको कहिए वेलकम है आपका, आप मीटिंग पर समय से पधारे, बहुत खुशी हुई मुझे, ऐसे जैसे एक ऑफिशियल रूप बना लीजिए, ऐसे ही अंदर तो अनऑफिशियल है, प्यार से सबको पुष्प दीजिए, एक एक बादाम मिश्री जो भी है वो दीजिए, मीठा मुंह कीजिए। वो जी आज की मीटिंग का शुभारंभ कौन करेगा, आप लोग करेंगे या मैं ही करूंगी, तो कहते नहीं नहीं आप ही करो, तो ये मैं करना, सबसे पहले मुझे ये आता है कि हम थोड़ा इस पर सोचें कि घर में काम तो बहुत है, आप सब समझते हैं काम तो होता ही है, खाना भी बनाना है तो कपड़े भी धोने हैं तो सफाई भी करनी है, और ये आप सबको भी मालूम है। तो ऐसा हो सकता है कि हम सब आपस में मिलकर इस घर को एक सुंदर स्वर्गीय घर बनाए, और बहुत मैं भी, क्योंकि मैं भी कई बार चिड़चिड़ी रहती हूँ और आपसे भी प्यार से नहीं बोलती, मेरे को बहुत बुरा लगता है, और कभी कभी मैं बड़ा गुस्से में आपसे बात कर लेती हूँ जबकि मुझे करनी नहीं चाहिए, मैं कभी चीज बनाती हूँ ऐसे बनाती हूँ जैसे काम उतार रही हूँ, ये राइट नहीं। अब आपको मैं बताना चाहती हूँ कि मैं थक जाती हूँ, थक करके मैं थोड़ी टेंशन में आ जाती हूँ और चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। अभी ऐसा हो सकता है कि हम सब मिलजुल कर, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या काम है, इनमें जो भी काम आप कर सकते हो, बच्चों को भी पति को, जो आप कर सकते हो इजीली खुशी से वो आप च्वाइस कर लीजिए, और जो बाकी जो बचेगा वो सब मैं करूँ, लेकिन आप क्या क्या कर सकोगे वो आप अपना चुन लीजिए। ऐसे प्यार से उनको च्वाइस दीजिए और उनको चुनने दीजिए। आपके साथ वो 2-3 दिन काम करेंगे, तीसरे दिन ही खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे वो भूल जाएंगे हमने चुना था काम। 3-4 दिन के बाद पहले ही कह देना कि 4 दिन के बाद हमारी सेकंड मीटिंग होगी, ये फर्स्ट मीटिंग में हमने आपस में डिसाइड किया, तो सेकंड मीटिंग में फिर हम फाइनल करेंगे, फिर सेकंड मीटिंग में फिर थोड़ा बात कीजिए कि जो ड्यूटीज ली थी आपने और जो मैंने ड्यूटीज ली, अब थोड़ा हम आपस में चेक करें हम सब ठीक कर रहे हैं। फिर उनको फूल भी दीजिए, प्यार से दृष्टि दीजिए, बहुत अच्छी तरह मिलिए उनको, ये ना देखिए इसने ये नहीं किया उसने वो नहीं किया, नहीं कोई बात नहीं, फिर भी थोड़ा 2 दिन तो किया ना, तीसरे दिन नहीं किया तो क्या हुआ, हमेशा पॉजिटिव। और उनके एक एक ही गुण बताओ, देखे आपके पापा है इनमें इतना, और नकली गुण नहीं बताना, उनके असली गुण बताना, जब असली गुण बताएंगे तो वो आपको अपने आप अपने अवगुण बताएंगे, मेरे में तो ये भी है, आपको कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो ठीक कर लो, ऐसी क्या बात, आप ठीक कर लोगी। बच्चों को कहो देखो बेटा तेरे में ये, बेटी तेरे में ये है, 5-5, 4-4 उनके अच्छे अच्छे गुण बता दीजिए, खुश कर दीजिए उनको, फिर उनको लगेगा कि मम्मी हमारे गुण ही गुण बताती है, हमें ये तो अवगुण, तो कोई बात नहीं, आप कहते हो ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन अभी हम उस काम को रिवाइज करें, अगर आपको काम चेंज करना है तो आप चेंज कर ले, कोई भी चीज भारी लगे तो आप दूसरा ले लीजिए, वो दूसरा, ऐसे करके थोड़ा साथ मिक्स करना चाहिए। और थोड़ा प्यार से चिड़चिड़ापन रहता है ना, घर को वातावरण अच्छा, ना स्वयं संतुष्ट ना वो संतुष्ट, आप भी थके वो भी थके, ये क्या वातावरण बनाए। इसको थोड़ा सा गुण ज्ञान से अपना बना के प्यार से, और मैं समझती हूँ कि थोड़ा मीटिंग करके और अलॉट कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा भी करें, नेहमा करो। वाह आपने तो जी आज बड़े बहुत ही बढ़िया कर दिया, देखो तो सही कपड़े सूखने डाले, ऐसे अच्छे डाले हैं, थोड़े से मैं अभी ठीक कर रहा थी, कहेगा तुम तो ठीक कर रही थी, कहो नहीं आपने सब अच्छे डाले हुए हैं, सूख जाएंगे ना, सूखेंगे प्रेस करने में ठीक हो जाएंगे। बच्चे ने तो काम किया हो, मेरे बेटे देखो तो सही बर्तन मैंने मांजे, मेरे बेटे ने इतने अच्छे धोए कि चमक गए हैं बर्तन। मेहमा कर दीजिए कोई बात नहीं, लेकिन ऊपरी मेहमा नहीं कीजिए, समझो इनको मुझे अपने काम में साथी बनाना है। तो जिन्होंने किया नहीं, आपने उनको कभी सिखाया नहीं, और आज अचानक उनको करना पड़ा, तो थोड़ा सा उनको मुश्किल लगेगा ना, तो थोड़ा सा आपको इसमें जुटना। तो मैं ऐसा कहूंगी घर को मिला के, नहीं तो आप भी संतुष्ट नहीं हो, वो भी संतुष्ट नहीं है, वातावरण तमोगुणी हो रहा है, ना आपको नेकी है ना उनको कुछ आनंद आ रहा है, ये क्या लाइफ। लाइफ को अच्छा बनाइए, सुखमय बनाइए।
बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने सोचता हूँ ये पिछले दिनों हम ऑनलाइन एक पेटिशन भी पढ़ रहे थे कि ऑनलाइन वुमेन वर्कफोर्स जो है भारत में, लगभग इंडिया का जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें से लगभग 34% आबादी महिलाओं की है जो वर्किंग मदर्स हैं, जो घर का काम भी करते हैं बहनें और ऑफिस का भी काम करती हैं। तो 34% अगर हम हमारा वर्कफोर्स है और वर्क फ्रॉम होम के दौरान वो बहुत ही ट्रेमेंडस स्ट्रेस से गुजर रहे थे। आपने उन सभी के लिए सजेशन दे दिया, ये अच्छी चीज बताई कि हम ये मीटिंग बुलाएं, क्रिएटिव तरीके से हम काम डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर करके करें, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी से सारी चीजें हो सकती हैं। बहुत अच्छा लगा, और मैं सोचता हूँ बहुत सारे दोस्तों ने फीडबैक्स दिए हैं, मैं सभी फीडबैक्स पढ़ के नहीं सुनाऊंगा। रितु जी थैंक यू कहते हैं, और हमारे बहुत सारे दोस्तों ने प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं वो कितना बेनिफिट ले पा रहे हैं। हर दिन हम शाम को 5 से 6 बैठते हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। हमारे नए मास्टर ऑफ मेडिटेशन हर दिन हमें कुछ अच्छा पॉजिटिव सुनाते हैं, जिससे हम इस चेंज के सिलसिले में जो गुजर रहे हैं बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। हमारे सभी दोस्तों का धन्यवाद जो आज हमारे साथ यहाँ जुड़े, जिन्होंने सवाल पूछे, कमेंट्स लिखे, एप्रिसिएशन दिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद शाउट आउट के लिए। और आप सभी की तरफ से मैं चक्रधारी दीदी जी का धन्यवाद करता हूँ कि दीदी जी खास हमारे साथ लाइव दिल्ली से जुड़े और खास इस प्रोग्राम के लिए समय निकालकर हमारे साथ आए। हमारे पास दीदी आप जुड़े इसके लिए हमारे सभी दोस्तों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
मैंने सुनाया, बहुत खुशी है ऐसे मौके
जी। दीदी अभी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप, 4-5 मिनट के लिए आप हमें मेडिटेशन कराएं। इससे मिलता जुलता एक सवाल है, शायद 1 मिनट में आप इसका जवाब देते हुए मेडिटेशन करा दें। मेडिटेशन से रिलेटेड प्रश्न है, गौतम मुखर्जी पूछते हैं, दीदी जी मेडिटेशन म्यूजिक के साथ करें या बिना कुछ सुने करें, अर्थात साइलेंस में रह के करें, कौन सा तरीका सही है, कैसे किया जाना चाहिए मेडिटेशन। मैं समझता हूँ गौतम जी दीदी उसका उत्तर भी देंगे और दीदी के साथ हम मेडिटेशन भी करेंगे। दीदी जी मेडिटेशन के लिए
ऐसा कहूंगी कि कोई जरूरी नहीं कि म्यूजिक होना चाहिए, जिससे आपको सरल लगता है मन को एकाग्र करना। अगर साइलेंस में आपको एकाग्र करना अच्छा लगता है तो साइलेंस में, और अगर म्यूजिक थोड़ा सा आपको सपोर्ट देता है तो आप म्यूजिक कीजिए। लेकिन उसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि म्यूजिक हो तभी योग लगेगा या म्यूजिक ना हो तभी योग लगेगा। योग वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा पिता के साथ प्यार का, स्नेह का दूसरा नाम ही योग। जब हमको ये पता चलता है कि मैं आत्मा हूं और अजर अमर अविनाशी, इस देह में केवल मात्र टेम्पोररी टाइम के लिए वास कर रही हूं, मेरा अस्तित्व था है और रहेगा, मैं अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी, और मेरा परमानेंट अविनाशी परम पिता परमात्मा से संबंध है। क्योंकि वो सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी जो मुझे हर प्रकार की शक्तियां देने वाले मेरे दाता हैं, तो मैं आत्मा हूं और मेरा मन और बुद्धि कहीं ना जाए तो मैं सामने देखती हूँ, मेरे सामने चमकता हुआ दिव्य ज्योति स्वरूप मेरे पिता परमात्मा सर्व शक्तियों की किरणों रूपी हाथों से जैसे अपनी शक्तियां मुझ आत्मा को दे रहे हैं और मैं दाता की शक्तियों का रसा स्वादन करती हुई आनंद का अनुभव कर रही हूं। ऐसा आभास होता है कि मैं इस देह से निकलकर इस पांच तत्वों की दुनिया से निकल एक चमकता हुआ हीरा जा रहा हूं, सूर्य चांद तारा गण को पार करता हुआ इस ज्योति देश जहां चारों तरफ गोल्डन प्रकाश ही प्रकाश इस सुनहरे प्रकाश के मध्य चमकता हुआ ज्योति बिंदु बाबा सर्व शक्तियों का दाता मुझ आत्मा को अपने पास आकर्षित कर रहा है। मैं आत्मा उस दाता के पास आकर्षित होते ही होते उनके समीप पहुंच गई। कभी स्वयं को देखती हूं मैं चमकता हुआ एक दिव्य सितारा, कभी अपने पिता को देखती हूं चमकते हुए एक दिव्य सितारे। जिनकी सर्व शक्तियों रूपी किरणें मुझ आत्मा को मेरे प्यारे प्रभु का प्यार दिला रही थी। मैं आत्मा प्यारे बाबा के प्यार में डूबी हुई इसी सुंदर संबंध में सदा के लिए ऐसे सुंदर अनुभव को मैं प्राप्त करती रहूं। बाबा ये अनुभव मेरे से कभी छूटे नहीं, कभी मैं आपसे दूर ना हटूं, यही तो मेरे बाबा है, यही तो मेरा घर है, यही तो मेरा स्वरूप है। इतना समय में अपने घर में आई नहीं, अपने पिता के पास बैठी नहीं। दाता अब मैं आपके पास ज्यादा से ज्यादा आपकी सर्व शक्तियों का अनुभव करूं, आपसे मिलती रहूं, मिलती रहूं। शांति मेरे प्यारे बाबा, ओम शांति। मैं साकार मंच में अपनी काया में प्रवेश हूं, कर्म क्षेत्र पर कर्म में जा रही हूँ, फिर मैं आपके पास आती रहूं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।